آج ہے 28/2/91 کا پیسے کلر. 10 نمبر کے رجسٹر میں ایک گیت ہے جس کا ساتھی ہے بھگوان, ان کو کیا روکے آندھی اور کیا روکے طوفان. آندھی اور طوفان روکتے ہیں کیا؟ نہیں. تو روکنے کی بات کیوں آ گئی؟ ایندھن ڈالتے ضرور ہیں. کون؟ آندھی, طوفان, باڑھ, اتی ویکتی, اکال, دھرتی کمپ, یہ ہیں پرکرتی کے بڑے سے بڑے پرکوپ. لیکن جن کا ساتھی ہے بھگوان, ان کو یہ پرکرتی کے پرکوپ بھی روک نہیں سکتے. وہ پرکرتی جئی ہیں, پرکرتی کو بھی جیت لیتے ہیں. یہ منشیوں کے بنائے ہوئے گیت ہیں. بنائے کتنے ہیں؟ منشیوں نے. ان کا ارتھ کوئی کچھ بھی نہیں جانتے کہ واسطو میں یہ ارتھ کہاں کے ہیں اور کس سمے کے ہیں. پرکرتی وکرال روپ کب دھارن کرتی ہے؟ کب دھارن کرتی ہے؟ جب سما پردھان اسٹیج ہوتی ہے تو پرکرتی وکرال روپ دھارن کرتی ہے. گیت بھجن آدی گاتے ہیں, مہما کرتے ہیں بھکت لوگ. کس کی؟ بھگوان کی. پرنتو جانتے کچھ نہیں. مہما بہت کرتے ہیں. تم بچوں کو کوئی مہما نہیں کرنی ہے. تو ہوشیاری دکھاؤ. کیا کہ بابا کے منہ پہ ہم ڈپلی بجائے جائیں گے تو بابا خوش ہو جائیں گے؟ تو کوئی مکھ سے مہما نہیں کرنی ہے. بچے باپ کی کبھی مہما نہیں کرتے. باپ جانتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں. بچے جانتے ہیں یہ ہمارا بابا ہے. اب یہ بے حد کی بات ہے. پھر بھی سب بے حد کے باپ کو یاد کرتے ہیں. اب تک بھی یاد کرتے رہتے ہیں. بھگوان کو کہتے ہیں ہے بابا. ان کا نام شیو بابا ہے. جیسے ہم آتمائیں ہیں ویسے شیو بابا ہے. ان کا کس کا کہا اور کہنے والا کون؟ کہنے والا سپریم سول جیوتی بندو. اور ان کا کس کے لیے کہا؟ برہما کے لیے کہا. ان کا ایک وچن ہے بہو وچن ہے؟ اس کا کہا یا ان کا؟ ان کا. تو ان کا کون کون ہوئے؟ برہما پلس پرجا پتا. یہ ہو گیا اما باپ کا کمبینیشن, باپ دادا کا. اور جہاں باپ دادا ہے وہاں جیوتی بندو شیو تو ہے. وہ ان سے الگ الگ نہیں ہو سکتا. تو ان کا نام شیو بابا ہے. اس میں ساکار بھی آ گئے تو نراکار بھی آ گئے. جیسے ہم آتما ہیں ویسے شیو بابا ہے. وہ ہے پرماتما جس کو سپریم کہا جاتا ہے. ان کے ہم بچے ہیں. ان کو سپریم سول کہا جاتا ہے. ان کو کیوں نہیں کہا؟ ان کو کیوں کہہ دیا کہ سپریم سول کا پارٹ جس سمے بولا یہ واقعہ جس کے مکھ سے اس کے مکھ سے سپریم سول کا پارٹ جو ساری شکتی کو سپر کر کے رہتا ہے سپر موسٹ اس کے لیے نہیں ہے. ان کو کہا ہے مانا دور کے لیے. کوئی بھوشیہ میں آنے والا ایسا پارٹ ہے جس میں ज्योतिबिंदु सिद्ध भी कार्य करे और साकार और आकार रूप धारण करने वाली आत्माएं ब्रह्मा और जगत का भी कार्य करे, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? रहते कहाँ है? परम धाम, यह सबसे ऊंची से ऊंचा धाम, ऊंची से ऊंची स्टेज, जिसमें वाणी का भी गम नहीं, कोई क्या भी चिल्लाता रहे, कुछ भी बोलता रहे, वाणी का भी गम नहीं, कोई असर नहीं। सब सोल्स वहाँ रहती है। एक्टर्स ही सोल्स हैं, तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं, हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह मिलती है। क्या बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, तो उनमें कोई बहुत थोड़ी पैसे लेने वाले भी होते हैं, थोड़ा पार्ट बजाया, और कोई ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हीरो हीरोइन भी होते हैं, तो उनको बहुत पगार मिलती। तो हर एक के पार्ट के अनुसार इतनी तनख्वाह मिलती है, जैसा जैसा जिसका पार्ट वैसी वैसी उसकी पगार। ये हद की बात बता रहे हैं, बेहद की। बेहद में भी हीरो हीरोइन भी हैं, तो छोटे 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 मोटे एक्टर्स भी हैं जो शूटिंग पीरियड में ड्रामा को शूट करते हैं। सब आत्माएं जो वहां रहती हैं, सब पार्ट धारी है, परंतु नंबर वार सबको पार्ट मिला हुआ। वो तो लास्ट में सिर्फ आते हैं हाथ जोड़ के खड़ी होने के लिए, बस जब ड्रामा खलास होता है सब इकट्ठे हो जाते हैं। कोई शुरुआत से लेकर के आखिर तक पार्ट बजाते हैं, कोई बीच बीच में पार्ट बजाते हैं, तो नंबर वार हैं सब, सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट नोधा हुआ है, सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता, सब में ताकत भी एक जैसी नहीं हो सकती। क्यों? अरे जिसमें जितनी चाबी भरी हुई होगी वो उतना ही तो चलेगा, थोड़े समय की चाबी भरी होगी तो थोड़ा समय चलेगा, आज से लेकर के अंत तक चाबी भरी हुई होगी तो अंत तक चलेगा। तो सब में ताकत एक जैसी नहीं है, ताकत आती कहाँ से है? एक्टर के पास एक्ट करने की ताकत कहाँ से आती है? कौन देता है? डायरेक्टर। डायरेक्ट बाप, डायरेक्ट बाप से ही सब पावर भरते हैं। बैटरीज में पावर कहाँ से आती है? पावर हाउस से, जनरेटर से। लेकिन सब में एक जैसी ताकत नहीं है। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में, शिव की रुद्रमाला तो है 500 करोड़ की भी है तो 108 की भी है, लेकिन सबसे अच्छा पार्ट किन का है? है जो पहले पहले रुद्रमाला, पहले पहले माने 108 में जिनका नंबर पहले है, किंतु 108 में भी नंबर वार है और 500 करोड़ की जो रुद्रमाला है उसमें भी नंबर वार है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है, सिर्फ उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। चलो देखने को ही मिल जाए, तो ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंचे एक बाप है, ऊंचे से ऊंचे एक्टर, ऊंचे से ऊंचे क्रिएटर। क्रिएटर माना है ड्रामा क्रिएट करने वाला, सबसे जास्ती ड्रामा बनाने वाला। और एक बाणी में कह दिया, सबसे जास्ती ड्रामा कौन बनाता है? ब्यास। तो ऊंच से ऊंच एक्टर, ऊंच से ऊंच क्रिएटर, ڈائریکٹر جی کہیں, ڈائریکشن دینے والا. وہ تو سب ہے حد کے ایکٹر سے ڈائریکٹر شادی. ان کو اپنا چھوٹا چھوٹا پارٹ ملا ہوا ہے. کون جو چھوٹی موٹی ناٹک اور ڈرامہ یا فلم وغیرہ بنائی جاتی ہے, تو وہ سب ہے چھوٹے چھوٹے ایکٹر اور ڈائریکٹر شادی. پارٹ آتما بجاتی ہے, پرنتو دیہ ابھیمان کے کارن کہہ دیتے ہیں کہ منشی کا ایسا پارٹ ہے. باپ کہتے ہیں پارٹ سارا آتما کا ہے, آتما ابھیمانی بننا پڑتا ہے. باپ نے سمجھایا ہے کہ ستیوگ میں آتما ابھیمانی ہوتے ہیں, باپ کو نہیں جانتے. تم یہاں کلیوگ میں آتما ابھیمانی بھی نہیں اور باپ کو بھی نہیں جانتے, ابھی تم آتما ابھیمانی بنتے ہو. کلہ کلیش کے یوگ میں نہ اپنی آتما کو جانتے نہ پرماتما باپ کو جانتے, ان کو پڑے ہوئے ہو کلہ کلیش میں. اور جب کلہ کلیش سے مکت ہو جائے بدھی, من بدھی روپی آتما, تو سمجھا جائے کیا کہ تم آتما ابھیمانی ہو, پرماتما باپ کو پہچان, باپ کو بھی جانتے ہو. تم براہمنوں کو نرالی نالی ملتی ہے, کلہ کلیش کی اسٹیج والے یوگ میں یہ نالی نہیں ملتی. تم آتما کو جان گئے ہو کہ ہم سب آتما ایکٹرس ہیں, سب کو پارٹ ملا ہوا ہے. جو پارٹ ایک کا نہ ملے دوسرے کو انوکھا, وہ پارٹ سارا آتما میں ہے. کنتو جو ناٹک بناتے ہیں وہ بھی پارٹ آتما ہی دھارن کرتی ہے. کون سا پارٹ؟ وہ تو ناٹک کھیلتے ہیں اور کوئی ناٹک بناتے ہیں, یعنی ناٹک ڈراما کریٹ کرتے ہیں, کریٹر. تو وہ بھی پارٹ ان کی آتما میں موو ہے. اچھا پارٹ بھی آتما ہی لیتی ہے, آتما ہی کہتی ہے میں گورنر ہوں فلانا ہوں, پرنتو آتما ابھیمانی نہیں بنتے. ستیگ میں سمجھیں گے کہ میں آتما ہوں, ایک شریر چھوڑ دوسرا لینا ہے. پرماتما کو وہاں کوئی نہیں جانتے, نہ کلہ کلیش کے یوگ میں پرماتما کو جانتے اور نہ ستیگ میں جانتے. اس سمے تم سب کچھ جانتے ہو, اچھے کو بھی جانتے ہو اور برے کو بھی جانتے ہو. شودر اور دیوتاؤں سے تم برہمن اتم ہو. کیا شودر ہوتے ہیں کلیوگ میں کلہ کلیش کرنے والے, اور دیوتاؤں ہوتے ہیں ستیگ میں شانت سکھمئی اسٹیج میں رہنے والے. لیکن دونوں سے اتم وہ برہمن ہیں جو دونوں کی اسٹیج کا دھیان رکھتے ہیں. کیونکہ جان رکھیں گے تو اچھی اسٹیج کو دھارن کریں گے, جان ہی نہیں ہوگا نہیں دھارن کر سکیں گے. اتنے بھیڑ برہمن کہاں سے آئیں گے جو دیوتا بنیں گے. لاکھوں آتے ہیں پردرشنی میں, جس نے اچھی طرح سمجھا جان سنا وہ پرجا بن گئی. کیا ہاں اچھی طرح سنیں گے تب تو ستیوگ کی پرجا بنیں گے. وہاں تو یتھا راجا تتھا پرجا ہوتی, سب دیوتائیں ہوتے ہیں. کوئی آئے اچھی طرح سنے بھی نہیں, ہر بات میں اشردھا کوئسچن, اچھی طرح سنتے ہی نہیں. جان سنا ہم سنا کر دیا تو کیا بن جاتے ہیں نا, وہ تو پرجا بھی نہیں بن سکتے. پرجا کون بنیں گے؟ جو پردرشنی میں آتے ہیں اچھی طرح سنتے ہیں اور سمجھتے, صرف سنتے ہی نہیں سمجھتے بھی ہیں. एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है, तुम प्रजा बहुत बनाए रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे। प्रदर्शनी से तो मोस्टली प्रजा बनती है, लेकिन प्रजा बनने वालों में कोई कोई और आगे बढ़ते हैं, तो अच्छी तरह समझ करके अच्छा सीख जाते हैं, फिर खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो जो दूसरों को सिखाने लग पड़ते हैं वो फिर प्रजा की स्टेज से ऊपर आ जाते हैं। फिर जो सिर्फ प्रजा नहीं रहते, फिर उन्होंने अपनी प्रजा बनाना शुरू कर दी तो खुद क्या बन गए, राजा। अगर सर्विस नहीं करते दूसरों की तो शुरू कर दे। मान लो ज्ञान बहुत लेता है कोई, ज्ञान समझता भी बहुत कुछ है, लेकिन दूसरों को नहीं सुनाया, तो इससे साबित होता है कि वो प्रजा बनेगा लेकिन साहूकार प्रजा बन जाएगा, बाकी राजा राजा नहीं बने। साहूकार प्रजा के ऊपर भी कंट्रोलर होते हैं, चाहे कोई कितना भी साहूकार हो है। इस गांव में मान लो कोई बहुत साहूकार आदमी है और कोई अधिकारी है गवर्नमेंट का, जिसको राजा की ताकत मिली हुई है, तो पुलिस इंस्पेक्टर आएगा उसको एक क्षण में हथकड़ी डाल सकता है, फिर बाद में चाहे भले कुछ भी हो, एक बार को तो वो उसको बंद करवा ही देगा। तो पावर ज्यादा किसने हुई है, जिसमें राजा की ताकत, राज्य अधिकारी जो होंगे उनमें फिर भी ज्यादा ताकत होगी। तो जो सीखेंगे, योग लगाएंगे, सिखाएंगे, वो फिर निकलते आगे, प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं क्या, तो राजयोग सीखने की जो स्कूल है उसमें राजाएं थोड़े होते हैं और प्रिंस प्रिंसेस बहुत ढेर बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कौन से बनते हैं, जो राजा रानी के यहाँ जन्म लेगा वही तो प्रिंस प्रिंसेस बनेगा। तो जन्म लेने वाले तो राज परिवार में बहुत होते हैं, यानी आत्मा आती है और राजा के यहाँ जन्म ले लेती, किसके अधीन बन गई, राजा के अधीन बन गई। यहाँ शूटिंग हो रही, यहाँ राजाओं का राजा बनाने वाला आया हुआ है, कोई को निमित्त बनाता है किस बात के, राजा बनाने का। तो वो जो आया हुआ है तो उसके जो बनते हैं प्रैक्टिकल में, यानी कहाँ से आत्मा आती है और आकर के उस बाप की बन जाती है, तो सरेंडर तो ढेर होते हैं, लेकिन सिर्फ सरेंडर हुए और सर्विस नहीं की तो फिर वो प्रिंस प्रिंसेस बन जाते। जो बाद में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो समझो वो पहले बरी डोएंगे, क्योंकि 16,000 प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं त्रेता के अंत तक। तो कोई तो शुरुआत में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई लास्ट में जाके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, त्रेता के अंत में 16,108 संख्या हो जाएगी। तो प्रजा भी निकलेगी, साहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं और राजा थोड़े होते हैं। सत्युग में, सत्युग से त्रेता के अंत तक प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ज्यादा सत्युग से लेकर त्रेता के अंत तक प्रिंस प्रिंसेस बनते रहते हैं। सिर्फ 8 या 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो ये भी नथिंग, तुमने कोई फंक्शन किया ये भी कोई नई बात नहीं, अनेक बार किया है। फिर संगम पर ही यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे, बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। नंबर वन तो हर बात में होते ही हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे पीछे होंगे तो कहेंगे ये उनसे भी पीछे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं। होशियार जो होते हैं वो झट हाथ उठावेंगे। दूसरा पेज भाषण करने के लिए झट हाथ उठावेंगे। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। अभी कैसी ट्रेन हो है? पैसेंजर ट्रेन, जगह जगह बेचारी रुकती है, है? आगे चल के क्या बन जाओगे? मेल ट्रेन, जगह जगह नहीं रुकेंगे फिर। हाँ खास स्टेशन पर रुकना होगा क्योंकि कोई तो कंसंट्रेटेड ज्यादा होते हैं, तो जिनका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, बुद्धि होगा अच्छा होगा, तो वो जिस बात को भी पकड़ेंगे, जिस लाइन को पकड़ेंगे, तो उस लाइन पे स्टेप फॉरवर्ड सीधे दौड़ेंगे, रुकेंगे ही नहीं। और कोई को फिर योग बल होता नहीं है तो जो रास्ता पकड़ते हैं उसमें रुकते रुकते चलते जाते हैं, तो टाइम ज्यादा लगता है। जैसे मम्मा स्पेशल मेल थी क्या? हाँ, एक तो मेल होती है, एक होती है सुपरफास्ट। स्पेशल मेल हो गई। बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं क्या? बाबा में तो सुप्रीम सोल भी है, तो हर्रा डब्बा भी है। मम्मा बाबा जिसने प्रवेश किया तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन पुरुषार्थ कर रहा है, कौन दौड़ रहा है। मम्मा में तो शिव बाबा आता ही नहीं, कुंवारी कन्या में शिव बाबा आता है। अरे पुरानी बातें भूलते जाते। तुम समझ नहीं सकेंगे कि इनमें कौन कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं या शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि ये तो दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा का तुमको पता पड़ जाता है पुरुषार्थ का क्या सीखिए। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। चलो ब्रह्मा में तुम्हें पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, लेकिन तुम क्या समझो? तुम हमेशा यही समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। तो मम्मा में स्पेशल बात क्या थी, वो क्या समझती होगी? उसकी बुद्धि में हमेशा यही रहता होगा कि शिव बाबा समझाते हैं, तो उसकी ट्रेन कैसी हो जाएगी? सुपरफास्ट हो जाएगी, क्योंकि स्पेशल हो गई। धारणा ज्यादा है बाबा के महावाक्य पर। बाप और दादा दोनों जानते हैं परंतु अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं ये तो बहुत होशियार है, बाप और दादा की बात बताई। बाप और दादा दोनों जानते हैं परंतु वह अंतर्यामी है। वह बाहर से कहते हैं ये तो बहुत होशियार है। बाप भी मेहमान सुन करके खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़ करके ऊंच पद पाता है तो बाप समझते हैं कि ये बच्चा अच्छा कहा नाम निकालेगा। ये भी समझता है कि इस रूहानी सर्विस में भी होशियार है, संभालने वाले सर्विस में भी ठीक है। मुख्य तो भाषण है, किसको समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको पांच बच्चे थे तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि दो बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो पांच बच्चे हैं। कहा सपूत दो ही है क्या? है पांच बच्चे हैं लेकिन है नकामे, दुकान में आग लगाने वाले, धंधे को चौपट करने वाले, तो बच्चा कहेगी تو تم باپ کی ناک کٹانے والے ہو گئے, تو بچے کون ہوئے؟ جو سپوت ہیں وہ دو بچے ہیں. تو یہاں بھی ایسے ہیں, بچے تو بہت ہیں. باپ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر نرملا بچی بہت اچھی ہے. کون سے باپ کہیں گے؟ باپ کہیں گے, کہتے ہیں نہیں, یہ نہیں کہا. باپ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر نرملا بچی بہت اچھی ہے, بہت پریم سے باپ کو سمجھائے, سینٹر کھلوائے دیا. کیا کیا؟ سینٹر کھلوائے دیا ہے. کس کو سمجھائے؟ باپ کو. کیسے سمجھائے؟ کان پکڑ کے زبردستی نہیں. کیسے سمجھائے؟ پریم سے سمجھائے. یہ بھارت کی سروس ہے کیا؟ تم بھارت کو سورگ بناتے ہو, اس بھارت کو نرک راون نے بنایا. ایک سیتا قید میں نہیں تھی. ایک کی بات ہے کیا؟ لیکن تم سیتا راون کی قید میں تھی. باقی شاستروں میں سب دنت کتھائیں ہیں, یہ بھکتی مارگ بھی ڈراما میں ہے. تم جانتے ہو سچی کچھ سے لے کر جو پاس ہوا وہ ریپیٹ ہوگا. آپ ہی پوجی آپ ہی پجاری بنتے ہیں. باپ کہتے ہیں کہ پھر مجھے آ کر کے پجاری سے پوجی بنانا ہے. بنتے تو آپ ہی ہیں, اپنی کرنی سے پوجی بنتے ہیں اور اپنی ہی کرنی سے پجاری بنتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کیا کہ پجاری سے پوجی بنانے والا ایک باپ ہی ہے, کیونکہ وہ شکشا دیتا ہے. اب جو دھارن کرے تو بنے. پہلے گولڈن ایج پھر آئرن ایج بننا ہی ہے. سچی میں سوریہ ونشی لکشمی نارائن کا راجی تھا, رام راجی تو چندر ونشی تھا. ان کو پھر تیر بات دے کر کے ہنسک بنا دیا. ہاں کیسا بنا دیا؟ ہنسک. کیا ستیہ گمر تیر کمان ہوتے ہیں کیا؟ تریتا میں ہوتے ہیں کیا؟ ارے ستیہ تریتا میں تو کوئی ہنسا نہیں, سول ہنسا ہوتی نہ کام کٹاری کی ہنسا ہوتی. تو یہ بات کہاں کی ہے؟ یہ تو سنگمی کی بات ہے, سنگمی کی شوٹنگ پیریڈ میں. رام یا رام کی سہیوگی جو بھی آتما ہوتی ہے ان کو بان دے دیے. کون سے بان؟ جان بان مل گئے. تو سینٹر کھلوائے دیا. کتنے؟ ڈاکٹر نرملا نے, بھکتی مارگ کی ہڈی کی نرملا نے کہ بے ہڈی کی نرملا نے کھلوائے دیا. کام کھلوائے دیا. باپ کو پیار سے سمجھائے, سینٹر کہاں کھلوائے دیا؟ پیار سے سمجھائے, ڈاکٹر نرملا نے کھلوائے دیا. وہ تو بولا, جس سمے بولا تھا اس سمے کی بات ہے. اب بیتواڑی میں بولا تھا تو گجرات کو دہیج میں سینٹر ابھی نہیں ملے. دہیج میں سینٹر ملنے کی بات تھی. اب ڈاکٹر نرملا نے کون سا سینٹر کھلوائی دیا ہے؟ باپ کو سمجھا کے پریم سے, کیونکہ باپ آئے تھے تو ماننے والا آئے نہیں. کیسے زبردستی ناک پکڑ کے کھلوائے گئے؟ تو بہت پریم سے باپ کو سمجھایا, سینٹر کھلوائے دیا. یہ بھارت کی سروس ہے کیا؟ یہ سینٹر کوئی سادہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. ہاں پورے بھارت کی سروس ہے. ایسا کون سا سینٹر ہے کون سے شہر کا جہاں سینٹر کھل جانے سے پورے بھارت کی سروس ہو جائے گی؟ کمپل ہو جائے گی. کمپل کو بولا ہوا ہے, کمپل کا سدھار تو سارے بھارت کا سدھار. ایسے بولا موٹر کار چلاؤ. اب دیکھو پرتکاری نہیں,
اتنی جگہ بولا ہوا ہے دلی کا سدھار سارے بھارت کا سدھار, دلی کا پریورتن سارے وشو کا پریورتن.
سینٹر کھل جانے سے پورے بھارت کی سروس ہو جائے گی, کمپل ہو جائے گی. کمپل کو بولا ہوا ہے کمپل کا سدھار تو سارے بھارت کا سدھار, ایسے بولا ہے. اور موٹر کار چلاؤ تو رہے ہوں اب تمہاری پڑت کا نہیں, اتنی جگہ بولا ہوا ہے دلی کا سدھار سارے بھارت کا سدھار, دلی کا پریورتن سارے وشو کا پریورتن. یہ تو دلی اور کمپل ایک ہی بات ہو گئی, جہاں دلی ہے وہاں کمپل ہے, الٹی بات کر دی.
اتنا کہو کہ جہاں کمپل ہے وہاں دلی ہے, چیتنیہ دلی ہے. اچھا تم بھارت کو سورگ بناتے ہو, اس بھارت کو نرک راون نے بنایا. پہلے گولڈن ایج پھر آئرن ایج بنتا ہے. ستیوگ میں سوریہ ونشی لکشمی نارائن کا راج تھا, رام راج جو چندر ونشی تھا ان کو پھر تیر باز دے کر کے ہنسک بنا دیا. آج تو کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ تیر کون سا ہے اور ہنسا کون سی ہے, باڑ کون سے ہیں, سرکس کون سا ہے, بس تانا بانا دکھائی دیا. وہ تو پتا ہو گیا ہوگا نا, کیا تیر کون سا ہے, جان کے تیر دے دیے, کب دے دیے, سنگم سنگم میں کب, سنگم بھی تو بہت لمبا چوڑا سو سال کا ہے. نیتا جی کی شوٹنگ میں دے دیے, ارے رام کو بان کب دے دیے اور کس نے دے دیے, کب فیل ہو گئے, یج کے آدھی میں, یج کے آدھی میں رام فیل ہو گیا. ایسے تو کبھی کہا نہیں رام فیل ہو جائے گا, یہ بولا رام فیل ہو گیا تو کہاں پڑتا تھا, ریٹم پڑتا تھا کیا, یج کے آدھی میں رام والی آتما اور رام کے سہیوگی جو بھی تھے وہ سب اس سمے پڑھتے تھے, پڑھتے پڑھتے فیل ہو گئے. تو جو فیل ہو گئے تو باپ نے ان کو کیا کہا کہ لے لو تیر تم اپنے کمائی کھاؤ, شکار کرو کھاؤ, ہاں ہم تمہیں ڈائریکٹ راجا ہی نہیں دیں گے, تم اپنی کمائی کرو اور بڑا بچہ ہوتا ہے تو باپ سے الگ ہو جاتا ہے, تو باپ کیا کرتا ہے ان کو, اچھے نہیں اچھے باپ ہوتے ہیں تو ان کو ان کے حصہ کی کچھ نہ کچھ پراپرٹی دے دیتے ہیں کہ تم اپنا کما کو, تو تیر دے دیے. تو باپ کے پاس پراپرٹی کون سی ہے, گیارہ رتنوں کی پراپرٹی ہے, تو وہ آتما پور جنم سے اپنی پراپرٹی لے کر کے برہمن پنے کی آتی ہے. تیر بھی ہوتا ہے تو پرسارتھ روپی دھنس بھی, دھنس مانا شریر روپی رتھ ہے جو ایسا لکیلا ہو پرسارتھ میں, جیسے دھنس سے جب کھینچتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, لٹ جاتا ہے, مولڈ ہو جاتا ہے. جب جائیں جیسے مولڈ ہونا ہو وہاں بیٹھے پرسارتھ میں مولڈ ہو جانا, جہاں جھک کے چلنے کا ٹائم ہے تو وہاں جھک کے چل جاؤ, اور جہاں دیکھو کہ پاور ہے, پاور ہے ہم جیت سکتے ہیں, سبر ناک کیوں لگ رہا بھائی, تو ان کو پھر تیر بار دے کر کے ہنسک بنا دیا. آج تو کچھ بھی نہیں سمجھتے, سرکس جس میں باڑ بڑے ہوئے ہوتے ہیں, بدھ روپی سرکس. کہتے ہیں جنم ملتا ہے تو پرماتما سے بہت بڑی نعمت ملتی ہے ہر آتما کو, ہر منشی کو. وہ بہت بڑی نعمت کون سی ہوتی ہے, بدھی. ہر منشی کو اپنے اپنے طریقے کی بدھی ملی ہوئی ہے جنم سے ہی, تو بدھ روپی سرکس اس کو ملا ہوا ہے جس میں انیک باڑ بڑے ہوئے. ارتھ کچھ بھی نہیں سمجھتے, ارتھ کیا ہوا, ارتھ یہی ہوا کہ آپ پوری دنیا کا سنگھار کرتے جاؤ اور رام راجیہ کی استھاپنا کرتے جاؤ. تم سب روحانی چھتری ہو, چھتریوں کا کام کیا ہے, چھتریوں کی وشیشتا کیا رہی,
एक तो ब्राह्मणों की रक्षा करना, शूद्रों की नहीं, असुरों की रक्षा नहीं करेंगे। करेंगे किसकी? जो पवित्रता का पालन करने वाली आत्माएं हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से पवित्रता के लिए तरजीह देने वाली, पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाली, उनकी तो रक्षा करेंगे क्षत्रिय। और जो ब्राह्मण नहीं है या ब्राह्मण बनने की जिनकी इच्छा नहीं है, जिनका एम ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उनको क्या करेंगे? उनको मार मार बांओगे और ये अकेला नहीं करते रहेंगे। तो अब कुछ भी नहीं समझते। तुम सब रूहानी क्षत्रिय हो, लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षत्रियों का काम क्या रहा भारतवर्ष में? राजा जो बने हैं जन्म जन्मांतर, वो कौन से, कौन सी जाति के बने? क्षत्रिय बने, क्योंकि बिना लड़ाई के तो राजा ही हो नहीं, लड़ने की ताकत ही नहीं होगी तो मुकाबला कैसे करेगा? तो सामना करने की शक्ति विशेष होनी चाहिए। तो लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है, और मैदान में ही कोई ना आए तो उसको क्षत्रिय नहीं कहेंगे। मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। आजकल तो ऐसे भी लड़ाई लड़ने वाले हैं कि अपने घर में से ही बटन दबाएंगे, लड़ाई मैदान में जाएंगे भी नहीं, है? हाँ वही खलास कर देंगे घर बैठे बैठे। और यहाँ क्या बोला? लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। क्या अरे विरोधी करना है तो सामने आके करो, झुक के पीछे से मारने से क्या फायदा? वो तो कोई सहायता हो गई, वो तो हत्या हुई, लेकिन युद्ध के मैदान में सुरक्षा हुई। युद्ध का काम क्या है? देश की सुरक्षा करना। तो तुम सब हो रूहानी क्षत्रिय। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी सब है जिस्मानी क्षत्रिय। उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना और झगड़ना। किनको? जो क्षत्रिय हाँ बाहुबल से लड़ते झगड़ते हैं। तुम्हारी तो ज्ञान की लड़ाई है, धर्म युद्ध है। शुरू में मल्ल युद्ध होती थी, बाहों आदि से लड़ाई काहे से लड़ते थे? बाहुबल की लड़ाई लड़ते थे, मल्ल युद्ध आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। शुरू में कब? आदि। तो जो आदि में हुआ सो वो अंत में भी होता है। आपस में लड़ते थे फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बामतादी बने हुए, तुम भी क्षत्रिय हो और वो भी क्षत्रिय है। क्या तुम्हें कोई बामवादी छोड़ने की दरकार नहीं है? तुम माया पर जीत पाते हो श्रीमत पर चल करके। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। क्या रूहानी क्षत्रिय? तुम बाहुबल के आधार से कोई लड़ाई नहीं लड़ते हो, माया से कोई मल्ल युद्ध नहीं करते हो। क्या हाँ हमारी तो याद की यात्रा है, माया से लड़ाई भी लड़नी है तो कैसे करेंगे? याद करेंगे हाँ, योग बल से विजय पाएंगे। तो तुम श्रीमत पर चल करके माया पर जीत पाते हो। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूहे ही सब कुछ कर रही है इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा। रूह को बाप आकर के सिखलाते हैं। क्या क्या सिखलाते हैं? ये रूहानी लड़ाई जो माया का युद्ध है वो कौन सिखाते हैं? रूहानी बाप आकर के सिखाते हैं। किसके द्वारा है? सुनते सुनते भूल जाते हैं। इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा। क्या कहा? इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा। कौन सी कर्मेंद्रियों द्वारा? माया का युद्ध सिखाते हैं। अरे है? मुंह से बात चला के और नाक से भी कान से भी। कान से कैसे युद्ध करते हैं? कान से सुना के, कान से सुन करके, कान से क्या सुनते हैं? बाप जिस पेन में आते हैं उसमें बैठ करके कान से क्या है? कान से सुनाते हैं, मतलब सिर्फ मुख की इंद्रियों से ही लड़ाई लड़ी जाती है माया की, हाथ पैर और मुंह से लड़ी जाती है माया की लड़ाई, और कोई इंद्रियों से नहीं लड़ी जाती। बड़े बेचारे भोले हैं, है? ज्ञान इंद्रियों से ही लड़ी जाएगी संकल्पों की लड़ाई, और काय से लड़ी जाएगी, और माया की लड़ाई? माया सिर्फ ज्ञान इंद्रियों से ही लड़ाई लड़ती है क्या? है? जो माया रूपी रावण राज्य है वो सिर्फ ज्ञान इंद्रियों से ही लड़ाई लड़ता है क्या? बाहुबल से लड़ाई नहीं लड़ता, बाहुबल से भी लड़ता है। तो बाप आकर के वो युद्ध सिखलाते हैं, कौन सा? माया से युद्ध, इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा रूह को बाप आकर के सिखलाते हैं। कोई एक दो चार कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है या सारी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है? सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। जब कहा जाता है इंद्रिय जीते जगत जीत, तो जगत जीत बाप बनाने के लिए आया हुआ है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, सिखलाए रहा है युद्ध, तो कोई एक इंद्रिय की लड़ाई थोड़ी सिखाता है, है? सभी इंद्रियों पर पानी, खास कौन सी इंद्रिय के लिए कहा जाता है इंद्रिय जीते जगत जीत? काम इंद्रिय के लिए कहा जाता है। अगर काम इंद्रिय को जीत लिया तो बाकी तो सब जगत अपने आप भागे जाएंगे। इसलिए शंकर का गायन है क्या, किसको भस्म किया? कामदेव को पहले भस्म कर लिया, मुखिया को भस्म कर लिया, तो बाकी सब अपने आप चक्करी चक्करी काट जाएंगे। तो इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा रूह को बाप आकर के सिखलाते बच्चे, मुझे याद करने से फिर माया तुमको खाएगी नहीं। क्या? अगर मुझे सिखलाने वाले बाप को याद करोगे तो माया तुमको खाएगी नहीं, नहीं तो माया खाती रहेगी, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टे सुलटे संकल्प आएंगे नहीं। अगर तुम बाप को, जो सिखलाने वाला बाप है, कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत फैलाने वाला बाप है, उसको तुम याद करते रहेंगे तो कुछ भी तुम्हारा बाल बांका होने वाला नहीं। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। कब करो? सवेरे। बाबा आप कितने मीठे हो, हैं? ये लबोड़े ही देव बाबा के संग लड़ाई मत करो, क्या करो? बाबा आप कितने मीठे हो, हाँ? आत्मा कहती है बाबा आपने पहचान दी है, नहीं हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको सच्ची के आत्मत्यंत की नाले सुनाने के लिए आया हूँ। ये मनुष्य सृष्टि का उल्टा जार है, ये वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है, इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझाया है कि इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज हूँ, जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उसका मैं बीज हूँ। मुझे याद करते हैं, कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है, बीज तो सब अलग अलग है, लेकिन इस सारे मनुष्य सृष्टि में वैरायटी झाड़ का बीज मैं हूँ। तो नंबर वार निकलते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है, कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, ये कहावत कहाँ की है? हैं? कहावतें सब कहाँ की हैं? कहावतें, गायन, पूजन, यादगार, त्योहार, ये सब है संगम युग के। तो किसने भेजा? फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, तो संगम युग में किसने भेजा? शिव बाबा ने किसी को कहा, क्या कहा? कि जाओ अपने धर्म खंड में जाके सर्विस करो, परंतु वहां से भेजते नहीं है। कहां से? कोई परमधाम से भेजने की बात नहीं है, हाँ, इसलिए मुरली बोला तुम बच्चे आगे चल के परम धाम को भी इसी कश्ती पर उतार लेंगे। स्त्रियां निसंकल्पी तेज बन जाएगी, वाणी से परे की तेज। और जब वाणी से परे की तेज होगी तो कोई भेजने की बात नहीं रहेगी। जो बाप का संकल्प वो फिर बच्चे का संकल्प स्वतः ही होगा। तो ये ड्रामानुसार रिपीट होता है, ये एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। क्या कहा? उनको जो भेजते हैं, इनको पैगंबरों को, चाहे शूटिंग पीरियड में और चाहे उधर, वो तो सिर्फ क्या करते हैं पैगंबर वगैरह, वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करेंगे, अपनी धारणाएं स्थापन करेंगे। इब्राहिम होगा तो कामी इस्लामी विचारी बनाने का धर्म स्थापन करेगा, मुसलमान होगा तो मान का तो लोगों का धर्म स्थापन करेगा। और ये धर्म पिता है तो अपना अपना धर्म अपनी अपनी धारणाएं स्थापन करते हैं कि ऐसे ऐसे करो और ऐसे ऐसे जियो। ये जिंदगी जीने के तरीके अपने सिद्धांत बताते हैं, अपनी धारणाएं बुद्धि में स्थापन करेंगे। और बाप धर्म भी स्थापन करते हैं और साथ साथ राजधानी भी स्थापन करते हैं, और पुरानी राजधानियों और पुराने धर्मों का विनाश भी बाप करते हैं। ये और कोई पैगंबर करता नहीं, संगम युग में भी वो नहीं करते। बाप उनको भेजता जरूर है लेकिन धर्म स्थापन सिर्फ करते हैं, लेकिन राजधानी स्थापन नहीं कर सकते। तो ये एक ही है जो धर्म और राजधानी दोनों स्थापन कर रहे हैं, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता है इस बात को कि धर्म के साथ साथ राजाई और राजधानी की स्थापना करने वाला कौन है ऐसा धर्म पिता। अभी तो है संगम युग, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। संगम युग में क्या होना है? विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी, ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया, बाकी मेरा नाम है क्या? मेरा जो काम है असली वो तो है शिव कल्याण करने का, लेकिन फिर रौद्र रूप जिनके लिए धारण करना ही पड़ता है, तो फिर उन्होंने नाम क्या रख दिया? जैसा काम वैसा नाम, रुद्र नाम रख दिया। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो, तुम ऊंच ठहरे ना, पीछे और बिरादरियां निकलती। इस्लामी बौद्धिक शिक्षण वगैरह, वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो, चाहे इस्लामी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, हैं तो वास्तव में सब किसके बच्चे? ब्रह्मा के बच्चे। क्योंकि ब्राह्मणों की भी नौकुरियां हैं, जात जाति के ब्राह्मण हैं क्या? हाँ, एक तरह के ब्राह्मण नहीं है, नौ धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भी हैं, कच्चे ब्राह्मण भी हैं, पक्के ब्राह्मण भी हैं, नंबर वन भी हैं। तो ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या? सिर्फ फादर नहीं, ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर भी नहीं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जो भी महान धर्म पिता है उन सबसे महान, ग्रेट ग्रेट, ये कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मा देवता विष्णु देवता, उन दोनों देव से ऊंचा। तो सिजरा है पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता है वंशावली। कैसे हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? रचना तो है, वो जब पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं, वो ही आकर के दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं, इसलिए बुलाते हैं बाबा दुखहरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार। क्या कहा? किसका द्वार? हरि का द्वार। क्या हरा? दुख हरा। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। द्वार किसका? हरि का द्वार, वहाँ गंगा बहती है। हरि के द्वार में ज्ञान की गंगा बहती है, समझते हैं कि हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे। क्या गंगा में स्नान करेंगे और हरि की पौड़ी में पड़ जाएंगे? परंतु हरि का द्वार कहाँ है वो तो समझो पहले। ये फिर कृष्ण को कह देते हैं, भक्ति मार्ग वाले हरि किसको कह देते हैं? कृष्ण को समझ लेते हैं। हरि हरि कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, हरि का द्वार तो शिव बाबा है। दुखहर्ता सुख करता कौन है? शिव बाबा, न कि कृष्ण या ब्रह्मा की सोरी। नहीं, दुखहर्ता सुख करता है पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। क्या मालूम पड़ा है? हाँ, बाप का भी पता मालूम पड़ा और अपने बाप का घर का भी पता मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है। क्या कहा? बाप की गद्दी ऊंची है थोड़ी, क्या कहा? नहीं, हाँ हाँ, फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना उसे नीचे। रुद्रमाला कहते हैं, रुद्रमाला सो विष्णु की माला। क्या जो रुद्रमाला के मरते हैं वो फिर नंबर वार विष्णु की माला में पिरोए जाते हैं। वो ही मर के बाद में विष्णु माला माना विजय माला, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले बन जाते। विष्णु के गले का हार वो फिर विष्णुपुरी में राजी करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है। क्या था? ब्राह्मणों का संगठन बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? हाँ, माला रूपी संगठन ब्राह्मणों का नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जब तक अधूरा है तब तक ब्रह्मा अधूरा है। तो ब्रह्मा मृत्युलोक में है या अमरलोक में? तब तक मृत्युलोक ही है। और जब ब्रह्मा संपूर्ण बने तो क्या बन जाता है? ब्रह्मा तो विष्णु। तो जब ब्रह्मा अधूरा तो ब्राह्मण भी अधूरे। तो अधूरे ब्राह्मण होने के कारण कुछ न कुछ कमी रह जाती है। प्योरिटी की यूनिटी नहीं बन पाती। तो ब्राह्मणों की माला नहीं है। जो संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण फरिश्ता, फिर फरिश्ता से देवता बनते। तो ब्राह्मणों की माला नहीं है क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। माला क्यों नहीं है? क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। टूट गई है माला मोती, बिगड़ गए दो दिन रहकर सास न जाने किधर गए। अभी अभी निश्चय बुद्धि बाप आया हुआ, अभी अभी बाप ना ससुर आराम ही फंसी है। बाप समझाते हैं कि नंबर वार तो सब हैं, आज ठीक हैं, कल तूफान आ जाते। माया उनकी बुद्धि में तूफान ले आती है। थोड़े दिन आज से लेकर के अंत तक तो बाप का साथ कोई कर ही नहीं पाता। शंकर की सहयोग रूपी भुजाएं बहुत दिखाते हैं या थोड़ी? दो चार दिखाते हैं। ब्रह्मा को ढेर भुजाएं दिखाई है। तो प्यार का पार्ट है तो सब संग लग जाते है। ठंडी रोशनी है, कीड़ो मकेरो है लग जाते जियत रात। हाँ, तो आज ठीक है कल तूफान आ जाते हैं। तो ग्रहचारी आने पे ठंडे हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी उनको आती है और फिर ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरा बनंती तीसरा पेज। बाप क्या कहते हैं? मेरा बनंती मेरे बन जाते हैं। आचार्यवत सुनंती बनने के बाद। अरे बन गए तो सोच समझ के बने के ऐसे ही कुआं में कूद पड़े।
तो तो
बनारस में जाते हैं और अंधे कुएं में कूद पड़ते हैं जाके। तो भी कहते हैं कि उनके पूर्व जन्म के सब पाप खलास हो जाते हैं। कम से कम एक बार हिम्मत तो की बाप का बनने की।
तो
बाप फिर वो तो बनना ही है क्योंकि समझ के नहीं आए ना। अंधश्रद्धा पूर्वक आए अंधश्रद्धा तो है बाप को, सरेंडर तो हुए बाप को, लेकिन बाप को पहचान के सरेंडर होना कि बाप क्या है, ऐसा तो नहीं कि बाप के बन जाए तो फिर हमारा पाप पुण्य बनेगा ही नहीं। अरे बाप के बनोगे और फिर अगर गलत काम करोगे या बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलोगे तो दुनिया में बनते थे 100 गुने या 1 गुने और यहाँ बनेंगे 1000 गुने 1,000,000 गुने। तो बाप की उस गुह्य गति का उनको पता ही नहीं, पहचान ही नहीं है बाप की कि बाप क्या है। तो बाप कहते हैं मेरा बनंती, जब नहीं पहचानो बन गए तो फिर जो बाप सुनाएंगे तो क्या है, कैसे सुनेंगे, आश्चर्यवत सुनेंगे या सहज सहज सुनेंगे, फिर आश्चर्यवत सुनंती। अरे ये भी बात है, ऐसे भी होता है। फिर कथंती, फिर अपने अंदर नहीं समझ सकते हैं वो आश्चर्य वाली बात, निर्णय नहीं कर सकते कि राइट है या रॉन्ग है, ऐसा भी होगा। तो जब निर्णय नहीं कर सकते तो फिर दूसरों के कान में मंत्र फूंकेंगे। हाँ कथंती, फिर ध्यान में जावंती, हाँ बढ़ते ही चले जाएंगे आगे, ध्यान में जावंती, माला में फिरोवंती, माला में भी पुरोज दिए जाएंगे, फिर एकदम भागंती। बाद में ही पता चलेगा कि हाँ ये भाग गए। जब भागने को करेंगे या भागेंगे तो उस समय कोई जान नहीं सकता कि ये भाग रहे हैं या बाबा बाबा की परमिशन से जा रहे हैं या बाबा को खुश करके जा रहे हैं, बाबा को प्रेम से मना करके जा रहे हैं, ये पता ही नहीं चलेगा। फिर बाद में पता चलेगा कि ये तो भाग गए। एकदम भागंती, चंडाल बनती, फिर माला कैसे बने। तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती क्योंकि नीचे ऊपर होते रहते हैं, भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है। भक्त माला में मुख्य है फीमेल, क्या कहा, भक्तमाला में मुख्य कौन है, फीमेल, और फीमेल्स में सब सीताएं भक्तियां, ये थोड़े कहा कि सब सीताएं सब राम भक्तियां हैं, राम तो एक ही है, बाकी सब सीताएं भक्तियां हैं। तो स्त्री का नाम क्यों लिया, क्योंकि स्त्री में भक्ति भावना जाती होती है, फिर भी तो फीमेल्स में फिर मुख्य नाम किसका गाया हुआ है, हैं? मीरा का। फीमेल से में मुख्य नाम गाया हुआ है मीरा का।
28/12/91 का प्रातः क्लास तीसरा पेज 10 नंबर के रजिस्टर में 134 पेज का आदि बात चल रही थी। फीमेल से में फर्स्ट क्लास भगतिन कौन, मीरा, मीर साहब नहीं, मीरा है? मीर और मीरा का छोटा शाहजादा और शाहजादी, क्या शाहजादा और शाहजादी, तो शाहजादा शाहजादी ना कह के राजकुमार राजकुमारी कह रहे थे, राजकुमारी नाम नहीं दिया, क्या नाम क्या दिया, मीरा। मीरा मान शाहजादी, जादी मान पुत्री बेटी किसकी, शाह की, शाहन शाह कहते हैं।
मीरा हिंदू
थी, हाँ हाँ वो तो हुई थी, वो तो हुई थी, लेकिन भगत सिंह तो थी, यहाँ भी सब हिंदू ही होंगे और क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे तो भी क्या होगा, देवता नहीं रह जाएंगे, रहेंगे क्या, हिंदू रह जाएंगे, क्योंकि समझते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, बाकी तो सब हिंसा, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, हिंसा बढ़ाने वाले हैं। तो भक्ति में है मीरा और भक्त, भक्त शिरोमणि कौन, नारद,
नदारद कह दो, क्योंकि भागंती की बात आई, नदारद माना भाग जाए। तो भक्त जो होते हैं जिनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं बैठा होगा कि परमात्मा क्या है, तो क्या होगा, नदारद हो जाते। नार का मतलब है ज्ञान जल, और द माने देना, यानी ज्ञान जल देने वाले। चलो वैकुंठ, वैकुंठ की स्थापना हो रही है, बाप आया हुआ, खुद को धारणा नहीं है, दूसरों को सुनाते रहते संदेश, चलो वैकुंठ, हड़तालें बजती रहती हैं। तो मेल से मैं नारद, ये है रुद्रमाला, क्या ये है रुद्रमाला, कौन सी ना, वो तो भक्तमाला बताई नारद और मीरा, क्या बताई भक्तमाला, और ये क्या बताई रुद्रमाला, ज्ञानी तू आत्मा होगी। संगम पर बाप ही आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, वहां है जीवन मंद, कहां हाँ, रावण की आसुरी संप्रदाय की जेल में है, कहां अनुभव करते हैं, अपने को जेल में अनुभव करते हैं। और जो बाप के बच्चे बने वो कहां अनुभव करते हैं, है? हाँ नहीं, न स्वर्ग में न नरक में, संगम में अनुभव करते हैं। समझते हैं कि बाप छुड़ाने आया हुआ है, और हम छूट ही जाएंगे। माता पिता भी काम चिता पर बिठाते हैं, जिससे तुम काले सांवरे बनते हो। लौकिक माता पिता क्या करते हैं, वो भी काम चिता पर बिठाए देते हैं, उससे तो तुम नीचे ही गिरते हो। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक में हैं। बाप कहते हैं कि नरक को लात मारो, बाप क्या कहते हैं, तो कोई गेंद है जिसको लात मारे, कोई स्थूल चीज तो है नहीं, न स्थूल पांव है, ये बुद्ध रूपी पांव से उस दुनिया को, हाँ उस दुनिया को जो विकारी बनाने वाली दुनिया है, विकारी माँ बाप की, उसको भूल जाओ, बिल्कुल बुद्धि से निकाल दो, और नहीं निकाला तो क्या होगा, है वही बनंती आचरीवत सुनंती कथंती और भागन। इस नरक को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही ले लो, जो तुम्हारी रावण ने छीन लिए। क्या ये मत समझो कि बाप हमारी राजा ही छीन रहा है, हमको आधीन बनाई लिया है? अरे बाप के बंधन में एक जन्म बंधना, तो ये जन्म जन्मांतर के लिए मुक्त होना ही नहीं, जीवन में मुक्ति प्राप्त करने का साधन है, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का साधन है, उसको उल्टा ना समझ। वो तो जन्म जन्मांतर को बंधन मुक्त बनाने का साधन है, वो तो अनेक जन्मों के 63 जन्मों के पापों से भी मुक्त करने वाला है, वो बंधन तो मीठा बंधन है, मीठा लगना चाहिए, कड़ुआ कड़ुआ नहीं लगना चाहिए, लेकिन बाप को पहचाना होगा तो मीठा लगेगा। अब बाप को बाप के रूप में न देख करके हरामी दुर्योधन दुशासन देखने में आएगा तो कड़ुआ लगेगा। तो बाप कहते हैं नरक को लात मारो, इस दुखदाई दुनिया को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही ले लो। जब पुरानी दुनिया को लात मारेंगे, देह और देह के संबंधी हुई दुनिया को, जो माता पिता नरक में ढकेलने वाले हैं उनकी तरफ अगर बुद्धि जाएगी तो कहां गिरेंगे, नरक में गिरेंगे ना, तो उसको लात मारो। और हाथ में किसको ले, जो नई आने वाली दुनिया है, जो बाप बनाए रहा है, उस संगठन की तरफ अपनी बुद्धि ले जाओ,
स्वर्ग की बात कह लो जो तुम्हारी रावण ने छीन लिए। ये तो बाप ही आकर के बतलाते हैं क्या कि तुम्हारी राजाई रावण ने छीनी है। मैं तुम्हारी कोई राजाई छीनने नहीं आया हूँ। हाँ, मैं तो देने आया हूँ। तुमसे जो कुछ लिया भी होगा कौड़ी चंटा वो सब तुमको तुम्हारे कई गुना करके वापस दूंगा। यहाँ का यहाँ भी वापस दे दूंगा और भविष्य अनेक जन्मों के लिए भी वापस मिल जाएगा। बाप किसी का रखता नहीं है क्या? बाप तो लेते ही है लोन पर। लोन पे चीज मांग के ली जाती है या बिना मांगे? मांगनी पड़ती है ना। क्या तो मांगनी पड़ता शादी? बिना मांगे नहीं मिलती है। ऐसे हो तो मंगनी होती है कोई कोई धर्म में, मांग के मिलते हैं।
जन्म एक
चीज
अधिकार होता है बाप को मांगने लगने के लिए।
बुलाने के लिए
जन्म जब होता है कभी तो उसका अधिकार उस पर जम जाता है तो मांगने मिलते हैं।
किससे अधिकार होता है मग जाता है जन्म? ये तो अलग अलग धर्मों की चलन बताई। कोई धर्म में मंगनी का हिसाब बना हुआ है, कोई धर्म में मांगते नहीं है। स्वतः ही घर बैठे मिलता है। जैसे ब्राह्मणों में या हिंदुओं में जो ब्राह्मण होते हैं खास करके ब्राह्मण या क्षत्रिय, तो उनमें कोई लड़के को लड़की ढूंढने जाना पड़ता है नहीं? लेकिन कोई कोई ऐसे धर्म है जिनमें मंगनी करनी पड़ती है। क्यों रसगुल्ला मालूम कोई धर्म ऐसा है? मुसलमानों में लड़की जो है प्योरिटी की पावर मांगी जाती है। तो बाप भी इस दुनिया में आए हुए हैं तो शरीर क्या कैसे करते हैं? शरीर लोन पर लेते हैं। तो बाप कहते हैं कि मैं ऐसा लोन पर लेने वाला नहीं हूँ, मेरे ऊपर विश्वास रखो। तुम्हारा जीव कहते हूँ वापस दे दूंगा। हाँ, तुम्हारी चदरिया फाड़ के नहीं रखूंगा। चदरिया भीनी भीनी है, उन्होंने तो लगा दिया दास कबीर ने ऐसी हो रही है। वो तो कबीर दास जी है, भगवान बन गए। अरे कबीर दास जी की बात नहीं है, वो शरीर रूपी चुनरिया जो है वो बाप ही आकर के जीव की त्यों धर दीनी चदरिया है। सो चादर सुर नरमनी ओढ़ी ओढ़ी के मैली की नी चदरिया है, उनने अपनो नाम लगाए दो दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी है। ये तो बाप ही है जो आकर के तुम्हारी जो भी धन संपत्ति है, तन की मन की धन की समय की संपर्क की संबंधियों की, वो अनेक गुनी करके वापस दे देता। तो तुम्हारी रावण ने ये बादशाही छीन ली है। ये बाप आकर समझाते हैं, वो इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं। कौन? बाप। बीज रूप है ना, इसका बीज रूप है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना, कि आत्माओं का बीज है। आत्मा तो अनादि है, उनका तो बीज होता ही नहीं, उनका बीज थोड़े ही कहेंगे। आत्मा तो है ही है, बीज में से झाड़ निकलता है फिर उसमें से ढेर सारे बीज तैयार होते। ज्ञान का सागर शांति का सागर ये आत्मा कहती है। बाप की महिमा भी जाते हैं फिर कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारे हैं। क्या महिमा भी गाएंगे कि ऐसे हो वैसे हो ये हो वो हो और फिर कह देंगे नाम रूप से न्यारा। अरे जब नाम रूप से न्यारा है तो बिंदी होगी, क्योंकि बिंदी को न कोई नाम है न कोई रूप है। रूप लाइट दिखाई पड़ती है तुमको, तो फिर तो नाम रूप से न्यारा हुआ ना। कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, महिमा भी करते इक्कर बित्तर में है। नाम रूप से न्यारा है माने वो कोई चीज है ही नहीं, जो कुछ है तो हम ही है। इस दुनिया में प्रैक्टिकल एक्ट में आने वाले हम ही हैं, और वो तो नाम रूप से यार क्योंकि नाम रूप जब तक नहीं होगा तब तक एक्ट तो हो नहीं सकती। ठिकर भित्तर में वो नाम रूप से न्यारा काय काय में है ना, यहाँ बोला ठिकर भित्तर में ऐसा में है जो ठोकर थोड़ी सी माया की लगे और टूट जाए ज्ञान में से मिट्टी के ढेले की तरह ठिकर होता है और टूट जाता। तो ऐसे ठिकर बुद्धियों में कोई परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा किसमें आता है, है? हाँ नित्य बुद्धि विजयंती और भीतर में है, भीतर माना भीड़ की, भीत माना दीवार, जो ज्ञान के मार्ग में दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते, न स्वर्ग में जाने का खुद पुरुषार्थ करते हैं, सुंदर स्वर्गीय संगठन बनाने का और न दूसरों को करने देते। तो कितने पत्थर बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि को पारस बुद्धि कहते हैं। तो बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, उनके आगे क्या था, जरूर कलयुग की अंत होगी तो संगम में हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है, बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। स्वर्ग का रचयिता कौन, बाप, किसका बाप है? पहले तो ब्राह्मणों का बाप, फिर सब जीवात्माओं मनुष्यों का बाप, फिर सब जीवात्माओं का बाप। वो आत्मा जो सुप्रीम सोल है वो किसका बाप है, पहले ब्राह्मण आत्माओं का बाप, फिर नंबर वार सब बिरादरियों का बाप है तो वो भी आत्मा है, फिर सब मनुष्य मात्र का बाप, और फिर जो भी आत्माएं हैं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इनकी आत्माएं नहीं है क्या, इनका भी बाप कौन है, बोल बिंदी हाँ। तो बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। तो तुमसे तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी, इन्होंने कैसे ली, कोई बताए नहीं सकेंगे। ये दादा भी कहता था कि मैं नहीं जानता क्या कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग की राजधानी कैसे ली, उन्होंने बेचारों ली हो तो जाने, वो तो जाकर के बच्चा बनेंगे, किसके बच्चा बनेंगे, बाप के, बाप के तो बच्चा बनेंगे, देवताओं के बच्चा बनेंगे, तो उन्हें तो देवताओं से प्राप्ति होगी, तो वो बेचारे क्या जाने। हाँ ये दादा भी कहता था कि मैं नहीं जानता क्या कि लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राजधानी, हाँ सतयुग की राजधानी कैसे ली, ये तो पूजा करता था परंतु जानता नहीं था किसको राजधानी कैसे ली। अब बाप ने समझाया है ये संगम पर राजयोग सीखते हैं, गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है क्या, हाँ ये गीता ही है, भले वो शास्त्र है मनुष्यों का लिखा हुआ, लेकिन और शास्त्रों में राजयोग की बात नहीं है, ये सिर्फ गीता में ही है, चाहे झूठी गीता ही सही, राजयोग की बात उसी में है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वो शास्त्र में गीता शास्त्र में कृष्ण का नाम दिखाई दिया है, तो कृष्ण बच्चा कोई राजा ही देने वाला नहीं है, राजा ही देने वाला, राजाओं का राजा बनाने वाला मैं हूँ, भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है, कौन सी नॉलेज, नर से नारायण बनने की नॉलेज, ब्रह्मा को कौन सी नॉलेज मिली, उनको तो नर से प्रिंस बनना है कि नारायण बनना है, प्रिंस बनना है, डायरेक्ट नारायण नहीं बनना है, पहले प्रिंस बनेंगे किसी राजा के यहाँ जन्म लेंगे तब उनको राजा ही मिलेगी और भगवान आकर के जो राज्य वो सिखाते हैं आकर के ऐसे नहीं आकर के चले जाए फिर तुम राज्य को सीखते रहो आकर के नर से नारायण बनने की नॉलेज देते हैं डायरेक्ट नर और नर से नारायण बन जाओ इसी जन्म में ऐसी नॉलेज थोड़े ही देते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाए और कहा जाए अगले जन्म में डॉक्टर बन जाए वो ना पढ़ते तो बहुत हैं यहाँ कहते भी रहते हैं कि हम नर से नारायण बने लेकिन ये नहीं जानते कि बाप इसी जन्म में हमको नर से नारायण बनाने के लिए आया हुआ है भारत का मुख्य शास्त्र है गीता गीता कब रची गई ये नहीं जानते बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ जिनको राज्य दिया था उन्होंने गवा करके फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े रावण का राज्य है सारे भारत की ही कहानी है भारत है ऑलराउंड और तो सब बाद में आते क्या कहा बीज तो होते हैं लेकिन बीजों में भी कोई पहले और कोई बाद में तो जो फसल पैदा करते हैं कोई भी पौधे की तो उसमें कौन सा बीज पहले लिया जाता है नई फसल उगाने के लिए जितने भी बीज होते हैं जो फसल तैयार होती है मान लो आम ही है तो आम में कौन सा आम जो है कौन से आम की बीज जो है पहले कलेक्ट करेंगे कोई भी हो चाहे कलमी हो चाहे देसी हो वो तो ठीक है वो तो कलम लगाने की बात हुई लेकिन पहले नंबर का जो फल होता है वो लिया जाता है उसका बीज सबसे अच्छा होता है तो बाप जी क्या करते हैं जो ऑलराउंड पार्टधारी बीज है वो ही बोते तो भारत है ऑलराउंड और तो सब बात में आते बीज रूप आत्माएं भी कोई एक साथ नहीं आ जाती सब सब नंबर वार आती है आखिरी जो आएंगे ना वो भी नंबर वार बाप कहते हैं कि तुमको 84 जन्म का राज बताता हूँ 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे वे अपने जन्म को नहीं जानते हे भारतवासियों किससे बात की हे भारतवासियों भारत में रहने वालों भारत नहीं भारतवासियों हे भारत में रहने वाले हे भारत के दिलो दिमागों में बसने वाले बाप आते हैं अंत में क्या कहा हाँ बाप बाप का रूप धारण करके कब आते हैं अंत में आते हैं पहले तो अम्मा या टीचर वगैरह के रूप में आते होंगे लेकिन तुमको जो प्राप्ति होती है वो कौन से बाप से होती है आने वाले बीज बोने वाले से या अंत में जो प्रत्यक्ष होता है उससे अंत में आज में आए तो आज अंत का नॉलेज कैसे सुना है आज में अगर आ जाए बाप बन करके तो आज अंत का नॉलेज कैसे सुनाएंगे तो आज से लेकर के अंत तक पूरा रूटीन हो जाए तो बाप फिर बाप बन करके आते कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया तो कब होता है अंत जब बाप बाप बन के आता है कब होती है शूटिंग पूरी हाँ बेहतर में थोड़े ही है? दो भरण भाई कह रहे हैं 76 में थोड़े 96 तक पूरी होगी हाँ तब आएगा हाँ सारी शूटिंग का रिहर्सल तब पूरा हो जाएगा तब बाप आएगा अभी थोड़े ही बाप पहुँच आया हुआ है क्या अभी कोई बाप आया हुआ है वो तो अंत में आएगा बाबा ने बोल दिया क्या बोला
लगा
लगी हुई है बाप आते हैं अंत में अगर आज में आ जाए तो आज अंत का नॉलेज कैसे सुनाएंगे किसको कौन से बच्चों को 500 करोड़ को भारतवासी कितने को 35 करोड़ को
नहीं
है سو آٹھ کو بس ایک سو آٹھ کو ہی سناتا ہے آٹھ دس کروڑ کو سناتا ہے
آٹھ دس
بڑی مصیبت باپ جو ہے وہ سنمکھ آ کر کتنے بچوں کو نالج دیتا ہے بس ہاں جو ساڑھے چار لاکھ بچے ہیں وہ تو بالکل ڈائریکٹ باپ کے بچے ہیں تو جو ڈائریکٹ باپ کے بچے ہیں ان کو باپ کب ملتا ہے باپ کے روپ میں جان لے ہاں نمبر ون ارے ستیو کی شوٹنگ ہوئی باپ ستیو کی استھاپنا کرنے آئے ہیں یا کلیوگ اور دواپر تریتا جی ستیو کی استھاپنا کرنے آئے ہیں نا تو ستیو کی شوٹنگ پوری ہوئی اور باپ پرتیک پرتیک ہو جاتا تو وہ انت ہو گیا کون سا پیریڈ ہوا 76 تو آج میں اگر آ جائے تو آج سے لے کر ہم تک نالج کیسے سنائے تو اس لیے ستر سے لے کر کے 76 تک کا پورا ایک چکر گھوم جاتا ہے تو سمجھانے میں سہل سہل ہو جائے ستر میں چکی کی بردھی ہی نہیں ہوئی ہے تو سمجھائیں گے کیسے وہاں تو نالج کی درکار ہی نہیں باپ ابھی سنگم پر ہی نالج دیتے ہیں نالج فل ہے نا ضرور نالج سنانے انت میں آنا پڑے باپ کو کب آنا پڑے انت میں انت کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا کہ کل یوگ کی شوٹنگ جب ہوگی ٹوٹل تب انت میں آئے گا تب تم سنو گے بیٹھ کے ہاں تو اس سمے تو وہ سننے والی آتمائیں ہوتی ہی نہیں ہیں ڈائریکٹ کیا ان میں تو بہت سی ایسی ہوں گی جو ڈائریکٹ سنمکھ نہ سن کے کیسے سنیں گی ٹیپ سے ریڈیو سے ٹیلی ویژن سے اخبار سے آج میں تم کو کیا سنائیں گے تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں بھگوان واس کہ میں تم کو راجیوگ سکھلاتا ہوں کس سمے جو سنمکھ سنیں گے انہیں نے کہا کب سے سننا شروع کیا ہاں ان میں بھی نمبر مار تو ضرور نالج سنانے انت میں آنا پڑے انت میں بھی آئے گا تو کیا سب کو ایک ساتھ سنا لے گا کیا سنیں گے تو نمبر باری ابھی یہ سنگم یادو کورو پانڈو انہوں نے بیڈ پہنا دکھائی تھی یہ یونیورسٹی ہے پانڈو گورنمنٹ کی باپ سمجھاتے ہیں یادو کورو بنا سکالے وپریت بدھی کیا کس سے وپریت بدھی بندی باپ سے سپریم کورٹ کیوں ارے تم بندی کو یاد کرتے تو پریتی بدھی ہو بندی کو نہیں یاد کرتے تو وپریت بدھی ہوگی کون سی بندی کیسی یاد کر ارے وہی بندی بندی سب ایک جیسی اچھا سب سے اوپر ہو سو سب سے اوپر اپنی بدھی لے رہے ہیں تو وہیں تو پتہ چلے تمہاری بدھی ہوں ہے زمین میں رگڑتے رہتے ہو تو اوپر کیسے پہنچے ہو ہاں تو بولا ہے پتا کیسے پڑتا ہے کہ ان میں باپ بھگوان ہے جب گیان سناتے ہیں تو گیان سے ہی اونچ سے اونچ نالج دینے والے کا پتا پڑتا ہے تو باپ سمجھاتے ہیں یادو کورو بنا سے کالے وپریتی بدھی ہو گئی کون کون وپریتی بدھی ہوئے یادو اور کورو ایک دو کو گالی دیتے رہتے ہیں باپ سے پریتی نہیں ہے تو پھر ایک دو کی گلانی کرتے رہتے ہیں کہہ دیتے ہیں کتے بلی سب میں پرماتما ہے پرماتما کوئی خاص ایک مقرر رتھ میں نہیں آیا
یادو
وہ ہوتے ہیں جو بمب پھوڑتے ہیں گلانی کے کیا ہاں ان کا ہیڈ ہے شنکر جی بم پھوڑنے والوں میں بھی سب یادووں کا باپ کون ہے شنکر تو باپ ابھی ودیشی بن کر کے آئے ہیں नहीं तो विदेशी की आत्माओं को संदेश कैसे मिलेगा क्या है? तो वो तो सबका बाप है, यादवों का भी बाप है तो कौरवों का भी बाप है तो पांडवों का भी बाप है। अब प्राप्ति कौन करेंगे? पांडव। तो एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप से प्रीति नहीं है, ये है पहचान। यादव कौरव कौन होंगे? बाप को हाँ जानेंगे मानेंगे, जानेंगे भी मानेंगे भी और चलेंगे भी, तो हुए पांडव। और जो सिर्फ जानेंगे लेकिन मानेंगे नहीं वो हो गए कौरव और यादव। न तो बेचारे जानते हैं, ऐसे ही धक्का मुक्ति से चले आए, उस कारण ही ब्राह्मण बन गए। हाँ न तो जानते हैं न मानते हैं और न उसकी मत पर चलते हैं। तो वो हो गई याद। हाँ एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप से प्रीति नहीं है। गाली किसे देते रहते हैं?
एक दूसरे
को। अरे जिससे प्रीति नहीं है पहले तो उसे गाली देंगे, फिर उसके बच्चों को गाली देंगे। कह देते हैं कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है, क्या कोई परमात्मा किसी एक में बना हुआ? अरे कामी कुत्ते में भी तो परमात्मा हो सकता है, काय नहीं हो सकता? और तो सब आत्माओं का बाप है, कामी कुत्तों में भी बाप है, बिल्लों में भी बाप है। क्यों? बिल्ले नहीं होंगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई नहीं होगी तो दुनिया का विनाश कैसे होगा? कुत्ते बिल्ली जैसी तो होती हैं, ऐसा पार्ट बनाने वाली तो होती हैं, है? एक कुतिया न सही, दूसरी कुतिया सही, दूसरी न सही, तीसरी सही, चौथी सही। वो तो कुतिया के पीछे लगने से उनको मतलब। बाकी पांडवों की प्रीति बुद्धि, कुत्तों को कोई प्रीति नहीं होती है किसी से। कुत्तों को क्या होता है? अपनी हविस, हविस पूरी करने से मतलब। बाकी पांडवों की प्रीति बुद्धि, पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। कौन? हाँ कोई दूसरे नहीं थे साथी, स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडित, और सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु वो तो सबका साथी है।
ज्योतिबिंदु का साथी है
वो तो सबका साथी है, और किसी का साथी नहीं। लेकिन जब वो शरीर में आता है तो गायन होता है, जिनका साथी है भगवान उनको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। तो ये प्रैक्टिकल की बात है, ऐसे तो बिंदु सुप्रीम सोल सबका है ही है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट में जब आता है तो जो बाप के बच्चे बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, उनका साथी है, और उनको कोई भी दुनिया की बड़े से बड़ी शक्ति रोक नहीं सकती। बड़े से बड़ी शक्तियाँ कौन सी हैं दुनिया में? ना ये शक्तियाँ हैं, सबसे बड़े से बड़ी शक्तियाँ हैं तीन। कौन कौन सी? परमात्मा शक्ति, दूसरी बाबा किसको कहते हैं? मैं भी सर्वशक्तिमान हूँ तो माया भी सर्वशक्तिमान, तो ये दूसरी शक्ति हो। माया बेटी कहते हैं ना, वो भी कोई कम पावरफुल थोड़ी है, तो बाप की बच्ची। और फिर हैं जो तीन नदियां पैदा हुई ना, तो सबसे बड़ी पुत्री कौन है? ना जमुना नदी सूरी पुत्री। हाँ जमुना नदी को सूरी की पुत्री कहा जाता है। हाँ तो जो बड़ी होगी तो पावरफुल तो होगी।
जमुना नदी
गहरी होती है, गहरी भी होती है, काली भी होती है, किलो वाली भी होती है। अच्छा तो माया जो है वो भी सर्वशक्ति होगी, तो वो भी शक्ति हो गई। और तीसरे नंबर है तीसरी शक्ति है प्रकृति। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में ये ऐसी शक्ति है कि माया भी सारी दुनिया का विनाश नहीं कर पाती, लेकिन प्रकृति सारी दुनिया का संहार करने में सहयोगी बनती है। तो तीनों का पति है भगवान, प्रकृति पति भी है तो माया पति भी है और लक्ष्मी पति तो है, लेकिन लक्ष्मी जो है वो नारायण की अनुगामी है। तो नारायण की शक्ति और लक्ष्मी की शक्ति वो तो एक होगी। तो बाकी पांडवों की प्रीति बुद्धि थी, पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडित। बाबा खत्म हो गया, उठा के फेंक दे। वो है जिस्मानी पंडित और तुम हो रूहानी पंडित। क्या पंडित तो हैं, पंडित कैसे? तुम हो रूहानी पंडित, मन बुद्धि रूपी आत्मा।